Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Puna isi Soma Skand ko Bhagavan Vishnu se Indra ne praapt kiya. और इंद्र को प्रसन्न करके मुच्चुकुंद ने प्राप्त करके दक्षिण भारत में इसकी स्थापना किया। मुच्चुकुंद के विषय में भी शिव भक्त चरित्र में एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर कैलाश से नीचे भ्रमण करते हुए नंदनवन में आए। नंदनवन में आने के बाद भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बैठ करके पार्वती को अनेक प्रकार से आत्मज्ञान की कथा सुनाने लगे, भगवत चर्चा शुरू कर दिया। जब भगवत चर्चा कर रहे थे तो संयोग से काला मुख का वानर आया और वानर आकर के पेड़ों पर इधर उधर घूमने लगा और बाजू में बिल्व वृक्ष के पेड़ थे। जब बंदर इधर उधर घूमता तो उसके पैरों के चोट से कुछ हाथ से बिल्व पत्ते नीचे गिरते जाते। भगवान शंकर जब तक आत्मज्ञान उमा को सुना रहे थे तब तक लगभग 1008 बिल्व पत्र गिरते रहे। भगवान शंकर ने कहा, देखो भवानी, 1008 बिल्व पत्र इस वानर के अनजाने से पत्ते गिरे हैं और सौभाग्य से आज प्रदोष है। प्रदोष बोलते हैं प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी जो तिथि होती है, द्वादशी से विद्या होती है, उसका नाम प्रदोष है। प्रदोष काल था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उस वानर को संकेत से बुलाया, उसे वरदान दिया कि जा तो धरती पर 1008 वर्ष तक राज्य करेगा। इस वरदान को सुनने के बाद वह वानर रोने लगा कि शास्त्रों में बतलाया है कि आपका दर्शन होने के बाद मोक्ष मिलता है और आप मुझे राज्य प्रदान कर रहे हैं। राज्य में अनेक प्रकार के बंधन हैं, आसक्ति होती है, कामना वासनाएं हैं। जैसे अग्नि में हम जितना घी डालते हैं उतनी ही लपटें बढ़ती जाती है, अग्नि शांत नहीं होती है। ऐसे राज्य के भोगने से और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह तो हम सभी लोगों की आत्मानुभूति है। बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, न जाने कितने भोगों को हमने भोग लिया, फिर भी आंखें भी अतृप्त है, कान भी अतृप्त, जीभ भी अतृप्त। यदि आंख एक बार सौंदर्य युक्त पदार्थ को देख लेती, पकड़ लेती, तो बार बार जो है ललचाई हुई आंखों से फिर हम बाजार के दृश्य को नहीं देखते, क्योंकि हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई से नए नए रूपों को देखना चाहते हैं। ऐसे जीभ यदि एक बार तृप्त हो जाती तो फिर नए नए पकवानों की, मिष्ठानों की इच्छा नहीं करती, पर यह भी तृप्त नहीं हुई। और कान भी ऐसा ही है, कान भी नए नए मनोरंजन कारक बातों को सुनने के लिए लालायित रहता है। तो संसार के विषय ऐसे हैं, जितना विषय का सेवन किया जाए उतने ही ये जो है विषयों की लपटें बढ़ती जाती हैं और ये लपटें जो है हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देती है। इसीलिए उपनिषद में जहां पर अन्न शब्द का प्रसंग आता है वहां पर दो व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने किया है, अत्ति इति अन्नम और आद्यते भोज्यते इति अन्नम। एक ही शब्द है, दो अर्थ निकाला है। हमारे यहां व्याकरण दर्शन की महिमा है व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम। एक ही शब्द है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा विलक्षण अर्थ निकल आता है। अतित्यन्नम का अर्थ है जो पूरे संसार को भक्षण करता उसका नाम अन्न है। दूसरा है कि जो खाया जाए उसका नाम अन्न है, पर वास्तव में देखा जाए तो अतित्यन्न में जो है सटीक बैठता है। अन्न हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है, हम जो है शमशान में जलकर राख हो जाते हैं, परंतु वह जस का तस बना रहता। तो उस बंदर ने कहा कि भगवान, ये जो आपने राज्य का वरदान दिया इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तो हमारी आज्ञा मान और तुझे बहुत जल्दी मोक्ष मिलेगा। तो जो है हमारे भक्तों से प्रीति करना, भगवान विष्णु की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना से तुझे सोमास्कंद नामक लिंग की प्राप्ति होगी, उसके बाद तू मुझे मरने के बाद सयुज मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही जो बानर था मरने के बाद मुचकुंद बना, मुचकुंद बनने के बाद जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के हाथ से सोमास्कंद प्राप्त किया। जब इंद्र से मुचकुंद की मैत्री हुई, मैत्री होने के बाद इंद्र ने कई बार मुचकुंद से सहायता ली। खैर आजकल तो ऐसा सुनने में नहीं आता है, पर प्राचीन हम पुराणों का अवलोकन करते हैं उसमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिस प्रसंग में इस धरती के बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा स्वर्ग लोक जाकर देवताओं की सहायता करते थे, उसमें से मुचकुंद भी बहुत मशहूर हो गए हैं। जब मुचकुंद देवासुर संग्राम करते करते थक गए तो थकान मिटाने के लिए उन्होंने सुखपूर्वक शयन की निद्रा मांगी। यह तो प्रसिद्ध है, भागवत में भी कथा मिलती है, परंतु शिव चरित्र में कुछ विलक्षण एक कथा मिलती है। यही मुचकुंद जब देवासुर संग्राम में दैत्यों को हरा दिए, उस समय इंद्र इनका बड़ा सम्मान करते थे और इंद्र ने कहा कि तुम अपना जो सबसे अभीष्ट प्रिय हो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अधेय नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे अपना सोमास्कंद शिवलिंग प्रदान कर दीजिए। इंद्र बहुत चिंतित हो गए, इस सोमास्कंद को मैं कैसे दे दूं। इंद्र ने बात को घुमा दिया। इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे यह सोमास्कंद नामक शिवलिंग दिया है, यह उनकी धरोहर है, यह यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। मुचकुंद भगवान विष्णु की उपासना में लग गए। 12 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे सोमास्कंद लिंग जो आप इंद्र को प्रदान किया वही मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया। जब भगवान विष्णु की अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद इंद्र के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया है, अब आप मुझे सोमास्कंद लिंग प्रदान कीजिए। इंद्र ने कहा कि कल प्रातः काल ले जाना, इधर जो है रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि तुम ऐसा सोमास्कंद बनाओ कि राजा को पहचान न हो असली नकली का। देखो इंद्र बहुत चतुर राजा माने जाते हैं, और ऐसा कृत्रिम सोमास्कंद लिंग बनाया कि राजा पहचान न पाए कि असली किया नकली किया, और उस नकली सोमास्कंद लिंग को प्रदान कर दिया। जब नकली सोमास्कंद लिंग को लेकर के धरती पर आए, दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित करके पूजा करने लगे, उन्हें सपने भगवान शंकर ने बतलाया कि इंद्र ने तुम्हें धोखा दिया है, यह जो है विश्वकर्मा से निर्मित नकली सोमास्कंद लिंग है। पुनः दोबारा गए, बोले कि इंद्र तुमने मेरे साथ छल किया है और यह तो नकली सोमास्कंद लिंग है, मुझे असली दो। इंद्र ने कहा कि ठीक है, कल पुनः ले जाना। इस तरह से 6 बार ठगा है इंद्र ने मुचकुंद को। 7वें बार मुचकुंद को बड़ा क्रोध आया है, बोले कि देखो तुम बार बार मुझे नकली शिवलिंग देते हो और भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं मांगता हूं, और अब की बार धोखा दोगे तो हमारा तुम्हारा हमेशा के लिए बैर हो जाएगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। तब जाकर के इंद्र 7वीं बार अपने प्रिय सोमास्कंद लिंग को मुचकुंद को प्रदान करते हैं। इंद्र को बहुत दुख हुआ, पर अब करते भी क्या, और पूजा का जो नियम था नियम बदलाया कि प्रातः काल उठ करके 650 से पूजा करना। 650 का अर्थ होता है कि पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुख्याचमनियम जितने हैं, स्नान है, माला है, नैवेद्य आरती पर्यंत, ये जो पूजा कहलाती है, इस तरह से पूजा करना। और इस सोमास्कंद के महिमा को बतलाया, वही सोमास्कंद लिंग जिसको कि पहले भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, विष्णु से इंद्र ने, इंद्र केवा मुचकुंद ने, तो वही राजर्षि मुचकुंद ने दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित किया है, उसकी बहुत ही विशेष महिमा यहां बतलाया है। तो भगवान शंकर के चरण की आराधना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, भावी मेट सकही त्रिपुरारी, यह केवल भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। अवस्मे भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। यह शास्त्र का वचन है कि मनुष्य जैसा भी शुभाशुभ कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए फिर भी जो अच्छे बुरे किए हुए कर्म उनको भोगना ही पड़ता है। परंतु भगवान शंकर के अंदर ऐसा सामर्थ है कि भावी को प्रारब्ध को मेटने में समर्थ है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि मनुष्य अपने मृत्यु के भय को निवारण करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और इससे बहुत कुछ संभव होता भी है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी की जीवनी है, उनकी केवल 8 वर्ष की आयु थी, परंतु उनके पिता श्री मृकंडू ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी 8 वर्ष की आयु है और आज से 5वें दिन तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। केवल 5 दिन की उपासना से ही भगवान शंकर को महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया और हमेशा के लिए चिरंजीवी बन गए मार्कंडेय ऋषि। तो भगवान शंकर की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य उपासना करने चलता है तो एक बड़ी भारी समस्या आती है। समस्या यह आती है योगक्षेम की। वह सोचता है कि यदि मैं उपासना करूं तो हमारा योग क्षेम कैसे चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कहा है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दुनिया कोई विश्वविद्यालय कोई भी आदमी इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकता है कि तुम पढ़ो लिखो साक्षर हो, मैं तुम्हें नौकरी दे ही दूंगा। कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकता, पर भगवान बिल्कुल ताल ठोक के कहते हैं, क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम, बस खाली तुम चिंतन करो, योग क्षेम का तो वहन मैं खुद करूंगा। नरसिंह मेहता जो गुजरात में बहुत मशहूर हो चुके हैं, भगवान उनका सारा योग क्षेम बहुत लंबी कथा आप सब लोग जानते हैं कैसे वहन किया। उनके लिए भगवान सेठ बन गए, साहूकार बन गए, न जाने क्या क्या भगवान बन गए। ये कलयुग की घटना है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथा है सुंदर पांडे की। सुंदर पांडे पांड्य देश के राजा थे। वे भगवान शंकर के हमेशा उपासना करते थे। एक दिन घूमते हुए वह अपने राज से बाहर कहीं चले गए, नदी किनारे घूम रहे थे। कुछ वहां पर जादूगर आए, जादूगरों ने कहा, राजन आपको हमारा नमस्कार हो, और आप जिस शिव की कंकड़ पत्थर की उपासना करते हैं वह तो कंकड़ पत्थर न बोल सकता है, जो स्वयं कुछ बोल नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, तो इस पत्थर की उपासना करने से क्या मिलेगा। आप देखो हमारे जादुई छड़ी में यह बल है कि जो चाहोगे सो हम कर सकते हैं। पांड्य सुंदर पांड्य राजा के सामने उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो ये लिंग है इसको हम चाहें तो सोना बना सकते हैं। राजा ने कहा कि जी तुमने सोना बना दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब बात ही बात में जो है तुरंत उसने मोर पंख से मंत्र पढ़ा और हाथ का शिवलिंग जो है वह सोना बन गया। अब सोना बनते राजा उस जादूगर के चरणों में गिर पड़े, बोले कि तू महान है। और तब से राजा ने भगवान शिव की उपासना छोड़ करके उस नास्तिक मत की दीक्षा ले ली। नास्तिक मतलब शरीर ही आत्मा है, तंत्र मंत्र सब कुछ है, इस कंकड़ पत्थर की पूजा करने से क्या होता है। इधर जो है जिस देश का राजा नास्तिक हो जाए, नास्तिक मत में दीक्षित हो जाए, प्रजा भी वैसी हुई हो जाती है। मंत्री रानी बहुत चिंतित हुए, दुर्भाग्य से चमत्कार के वशीभूत होकर राजा ने शिव भक्ति छोड़ दिया है, अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। परंतु राजा के सामने कौन बोले, पूरे राज्य में जो है नास्तिकों का बोलबाला हो गया, सर्वत्र जो है यह प्रसिद्धि हो गई कि शून्य ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मंत्री ईरानी के सम्मति से उस जमाने के बहुत मशहूर दक्षिण भारत में ज्ञान स्वामी थे, ये भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। उस ज्ञान स्वामी के पास मंत्री जाते हैं और जाकर अपने राजा की अवस्था का वर्णन करते हैं कि हमारे राजा भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु नास्तिकों के चमत्कार से प्रभावित होकर वे नास्तिक मत को स्वीकार कर चुके हैं। चमत्कार का मतलब होता है कार्य कारण भाव। जो चीज सामान्य ज्ञान से समझ में न आए परंतु कार्य कारण भाव से परिवर्तन, उसका नाम है चमत्कार। तो चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने शिव पूजा छोड़ दिया है। जब इस प्रकार से कहा तो ज्ञान स्वामी पांड्य देश के नगर में प्रवेश करते हैं। उनको एक बगीचे मंत्री ने ठहरा दिया और ठहराने के बाद सारा समाचार बता दिया। उधर जो है जब नास्तिकों ने सुना कोई भगवान शंकर का भक्त जिसका नाम सुंदर स्वामी है वो प्रधारा है, और वह जो है राजा से परामर्श करने वाला है, बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर के मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा मारण मंत्र का प्रयोग किया कि अग्नि जलती हुई सुंदर स्वामी के पास आई और उनके एक कुटिया को जलाने लगी। सुंदर स्वामी ने भगवान शंकर के 10 श्लोकों में प्रार्थना किया, तमिल भाषा में प्रार्थना किया। इसके बाद भगवान शंकर ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद अग्नि शांत हो गई। अग्नि देव ने कहा कि मैं तो शांत हो गया परंतु आप मुझे स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। सुंदर स्वामी ने कहा कि तुम्हें जिसने भेजा तुम उसी के पास जाओ, ये देश का राजा सुंदर पांडे तुम उसके पास जाओ, वही तुझे शरण देगा। वही अग्नि पुनः वापस पांड्य देश के राजा के पास आई और सुंदर पांडे को जलाने लगी। बेचारा जो है मूर्छित पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, झाड़ फूक की, वह ठीक ही न हो, परेशान। सारी नब्ज देखी, बोले कोई बीमारी नहीं इनको है, बस शाम तक हम लोग ठीक कर देंगे अपने तंत्र मंत्र से, पर कोई फायदा न हुआ। अंत में उसमें से एक नास्तिक ने कहा, इस राज्य में लगता है कोई सही भक्त आ गया है, उसी के प्रभाव से ये जो है राजा का ज्वर बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है, उसको देश से निकाला जाए। मंत्री ने कहा, तुम तो झाड़ फूक करके थक गए, तुम्हारी दवाई भी सारी समाप्त हो गई, कोई नहीं काम किया, और उल्टे तुम बोल रहे कि शिव भक्त को देश से निकालो तब शांत होगा। जब शिव भक्त को बुलाया गया, अच्छे आसन पर बैठाया, बैठते जैसे उन्होंने भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया, तत्काल ज्वर शांत हो गया, राजा उठकर बैठ गए। राजा ने कहा कि किसने मेरा संताप मिटाया है? मंत्री ने कहा कि शिव भक्त है, इनके मंत्र से आपका ज्वर शांत हुआ है। राजा ने कहा, ये नास्तिक लोग जो इतना बोल रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं ठीक किया? वे बोले कि राजन, इस समय दैव गति विपरीत चल रही है, इसलिए आप हम पर नाराज न होइए और आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि कौन मत श्रेष्ठ है, कौन मत श्रेष्ठ नहीं है, इसका नियामक तो शास्त्रार्थ है। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, परंतु शास्त्रार्थ में किसी का मत निर्णित नहीं हो पाया। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं एक कागज लिखकर अग्नि में डालता हूं, और जिसके मत का कागज जल जाए वह समझो कि हारा गया। राजा ने एक उनके मत सिद्धांत के अनुसार पत्र लिखवाया, दूसरा शिव भक्तों के द्वारा। जैसे ही उसकी उनके कागज को अग्नि में डाला, तुरंत जलकर राख हो गया। जब सुंदर स्वामी के पत्र को डाला तो बिल्कुल वैसी पत्र जस का तस रहा, नहीं जला। नास्तिकों ने कहा, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में हो सकता कोई दोष हो, और आपके दोष से ये अग्नि जो है ना हमारे कागज को जला डाली, इसलिए हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते, स्वीकार कर दिया। राजा ने कहा कि जब आप इतने बड़े प्रमाण को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तब तुम लोग ही बताओ कि मैं कौन सा प्रमाण पेश करूं। नास्तिक ने कहा कि राज से बाहर चलिए और बेगवती नदी में अपने अपने सिद्धांत के कागज को डाला जाए, जिसका कागज नदी के उल्टी दिशा में प्रवाहित हो वह मत श्रेष्ठ, और जिसका कागज डूब जाए वह मत कनिष्ठ। पर राजा ने कहा, क्या पता तुम लोग इसमें ही बेईमानी कर डालो, इसलिए पक्की शर्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि जो पराजित होगा उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे। जब ऐसा शर्त रखा, शर्त रखकर दोनों कागज मंगाया, दोनों के सिद्धांतों का, जैसे नास्तिकों के कागज को डाला वह तो जल में डूब गया, मछलियों ने खा लिया। जैसे सुंदर स्वामी के ओम नमः शिवाय मंत्रों से लिखित सिद्धांत को डाला, वह कागज जो है नदी के धारा के विपरीत चलने लगा। सारे नास्तिक पराजित हुए, उनको राजा ने सूली पर चढ़वाया, और कुछ तो डर के मारे राज्य को छोड़कर भग गए। तो सुंदर स्वामी भगवान शंकर के चरणों की उपासना से, ये कलयुग की कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है, दक्षिण भारत में ये कमलालय क्षेत्र की प्रसिद्ध, ये तमिल भाषा में ये तो अंकित है, हिंदी में नहीं है, शिवभक्त चरित्र में ये संकेत में लिखा हुआ मिलता है। तो भगवान शंकर की उपासना से जो भावी है, प्रारब्ध है, जो अवश्य हमें भोगना ही पड़ता है, वह भी मिट सकता है, बशर्ते हम जो है ना उसको साक्षात चैतन्य मानकर उपासना करें। और कलयुग में भगवान जो साक्षात चैतन्य है, वही चैतन्य भक्तों के उद्धार के लिए पाषाण खंड में प्रविष्ट हो गए। क्योंकि सतयुग में त्रेता में तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव में विश्वास था, पर कलयुग के कारण से हमारी बुद्धि ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि हम उस चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है माता पिता गुरु उनको तो हम शिव पार्वती समझ नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए पाषाण खंड में प्रवेश हो जाता हूं। तो उस चैतन्य की महिमा है, यदि हम उसमें श्रद्धा पूर्वक उपासना करें तो निश्चित ही वहां से उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। शेष विचार कल करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।